एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसे विषय में जिसे सुनकर शायद कुछ लोगों की स्कूल की यादें ताजा हो जाएंगी।
गणित।
हाँ,
लेकिन घबराइए नहीं, हम यहां कोई मुश्किल सवाल हल नहीं करने वाले हैं।
बिल्कुल नहीं, हम बात करेंगे गणित के इतिहास की, और वो भी एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से।
जी, हमारे हाथ लगी है जैकलिन स्टेडल की किताब द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
और ये किताब मतलब गणित को सिर्फ नंबरों और फॉर्मूलों के ढेर की तरह नहीं देखती।
सही।
ये दिखाती है कि गणित असल में इंसानी सोच, हमारी जरूरतें और अलग अलग संस्कृतियों के मिलने जुलने की एक बड़ी रोमांचक कहानी है।
और आज की दुनिया में ये नजरिया बहुत काम का है ना, जहां हम हर चीज को उसकी जड़ से, उसकी शुरुआत से समझने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये समझना कि गणित यहां तक पहुंचा कैसे, ये सिर्फ गणित को समझने में मदद नहीं करता।
हाँ,
बल्कि ये भी दिखाता है कि हम इंसान सीखते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं और ज्ञान वो कैसे आगे बढ़ता है।
तो चलिए पहले थोड़ी बात करते हैं जैकलिन स्टेडल की। कौन थी वो जिन्होंने ये नजरिया हमें दिया?
जैकलिन स्टेडल 1950-2014 ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गणित के इतिहासकार थीं, ब्रिटिश थीं।
अच्छा।
लेकिन उनकी खासियत सिर्फ पुरानी गणित जानना नहीं था, वो हिस्टोरियोग्राफी पर बहुत ध्यान देती थीं।
हिस्टोरियोग्राफी मतलब?
मतलब इतिहास कैसे लिखा जाता है, इस बात का अध्ययन। वो इस पर बहुत सोचती थीं।
अच्छा, मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि हम कैसे जानते हैं कि क्या हुआ।
हाँ, और क्या इतिहास लिखने में कोई तरफदारी या कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है?
खासकर गणित जैसे विषय में जहां लगता है सब कुछ एकदम लॉजिकल है।
बिल्कुल, उनकी एक और खास बात थी, वो हमेशा मूल स्रोतों तक जाती थी, पुराने गणितज्ञों के खत, उनकी पांडुलिपियां।
अच्छा, सीधे सोर्स से।
जी, सीधे उन्हीं को पढ़कर समझने की कोशिश। उनका ज्यादातर काम 16वीं से 18वीं सदी के यूरोपीय गणित पर था, लेकिन नजरिया बहुत व्यापक था। वो उन घिसी पिटी कहानियों को चुनौती देती थी।
जैसे?
जैसे कि गणित सिर्फ कुछ अकेले जीनियस लोगों की देन है या यूरोप में ही सब कुछ हुआ।
तो ये थी जैकलिन स्टेडल। अब आते हैं उनकी इस छोटी सी पर बहुत दमदार किताब पर, द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसका मकसद क्या है?
देखिए, जैसा नाम से लगता है ये कोई मोटी एनसाइक्लोपीडिया नहीं है।
हाँ, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन है।
इसका असली मकसद गणित के इतिहास की घटनाओं की लिस्ट देना नहीं है, बल्कि गणित के इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदलना है। यह हमें सिखाती है कि एक गणित का इतिहासकार वो सोचता कैसे है।
और स्टेडल का सबसे बड़ा तर्क क्या है इसमें?
उनका सबसे बड़ा तर्क यह है कि गणित कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है जिस पर सब कुछ बस तरक्की करते हुए आज तक पहुंच गया।
अच्छा, मतलब कोई लीनियर प्रोग्रेस नहीं है।
बिल्कुल नहीं, और ना ही ये सिर्फ यूरोप के कुछ महान पुरुषों की खोज है। ऐसा सोचना मतलब एक बहुत अधूरी तस्वीर देखना है।
तो फिर क्या है गणित उनके हिसाब से?
वो कहती है कि गणित असल में एक इंसानी गतिविधि है, कभी उलझी हुई, कभी अलग अलग दिशाओं में जाती हुई। इसे अलग अलग संस्कृतियों ने, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों ने, उस समय की टेक्नोलॉजी ने और समाज के माहौल ने, इन सब ने मिलकर शक्ल दी है।
मतलब ये किसी अकेले इंसान के दिमाग की उपज कम और एक सामूहिक सांस्कृतिक यात्रा ज्यादा है।
बिल्कुल सही, और इसी सोच के साथ वो इस आम धारणा को तोड़ती हैं कि गणित मुख्य रूप से यूनान और फिर यूरोप की देन है।
हाँ, ये तो बहुत सुना है हमने।
वो बेबीलोन, मिस्र, चीन, भारत और खासकर मध्यकालीन इस्लामी दुनिया के जबरदस्त योगदान पर रोशनी डालती हैं।
इससे तो गणित किसी एक इलाके की जागीर नहीं रहता।
नहीं रहता, पूरी दुनिया की साझी विरासत बन जाता है।
संक्षेप में कहें तो ये किताब गणित के इतिहास को सूत्रों और थ्योरम्स के म्यूजियम की तरह नहीं देखती।
नहीं, बल्कि इंसानी कहानियों, बौद्धिक संघर्षों, विचारों के लेन-देन और सोच के बदलते पैमानों की एक जिंदा कहानी की तरह पेश करती है। ये सवाल पूछती हैं, हमें गणित का इतिहास कैसे देखना और समझना चाहिए।
चलिए अब इस कहानी के अंदर चलते हैं, देखते हैं स्टेडल इसे कैसे परत दर परत खोलती हैं। किताब मोटे तौर पर समय के हिसाब से आगे बढ़ती है ना?
जी हाँ, लेकिन हर दौर में वो कुछ खास बातों पर ध्यान दिलाती हैं। पहला अध्याय ही बड़ा मजेदार है।
क्या है पहला अध्याय?
शीर्षक है गणित का इतिहास क्या है। यहाँ वो सीधी बात करती हैं विग हिस्ट्री की।
विग हिस्ट्री, ये क्या होता है? अजीब सा नाम है।
हाँ, शब्द थोड़ा अजीब है पर मतलब आसान है। इसका मतलब है इतिहास को सिर्फ आज के नजरिए से देखना।
अच्छा।
ये सोचना कि अतीत में जो कुछ भी हुआ वो बस आज की महान स्थिति तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी थी, और पहले के लोग कमजोर या कम समझदार थे।
हाँ, जैसे हम मान लें कि पुराने जमाने के लोग कम विकसित थे क्योंकि वो हमारी तरह नहीं सोचते थे।
स्टेडल कहती हैं ये गलत है। हमें अतीत के गणित को उनके अपने समय, उनकी अपनी सोच और उनके अपनी जरूरतों के हिसाब से समझना होगा।
यही वो नींव रखती हैं कि गणित कोई ऊपर से आया ज्ञान नहीं, बल्कि इंसानों का बनाया हुआ एक औजार है।
बिल्कुल, दुनिया को समझने और उसमें काम करने का।
फिर दूसरा अध्याय?
दूसरा अध्याय हमें प्राचीन और मध्यकालीन दुनिया में ले जाता है, और यहाँ स्ट्रेडल जानबूझकर यूरोप से शुरू नहीं करती।
कहाँ से करती हैं फिर?
वो बात करती हैं बेबीलोन की, मेसोपोटामिया, जहाँ मिट्टी की तख्तियों पर हिसाब किताब होता था। उनकी 60 के आधार वाली गिनती थी, बेस 60 सिस्टम।
60, अच्छा, जैसे हम आज भी समय में इस्तेमाल करते हैं, 60 मिनट 60 सेकेंड।
हाँ, और कोण मापने में भी डिग्रीज। सोचिए, वो तब से चला आ रहा है, और वो द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने के तरीके भी जानते थे।
कमाल है। फिर मिस्र का भी जिक्र है?
जी हाँ, मिस्र, जहाँ नील नदी के किनारे खेतों को नापने और वो विशाल पिरामिड बनाने के लिए व्यावहारिक ज्यामिति मतलब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री विकसित हुई
जरूरत के हिसाब से।
बिल्कुल। इसके बाद आता है प्राचीन यूनान, जिसका योगदान जबरदस्त है, खासकर ये विचार कि गणितीय सत्यों को सिर्फ मानकर नहीं बल्कि तर्क और प्रमाण से, डिडक्टिव प्रूफ से साबित करना चाहिए।
हाँ, यूक्लिड की एलिमेंट्स इसी सोच का नतीजा थी ना?
बिल्कुल। लेकिन स्टेडल कहानी यहीं खत्म नहीं करती, वो हमें तुरंत पूरब की ओर ले जाती हैं।
पूरब में कहाँ?
चीन, जहाँ 10 के आधार वाली संख्या प्रणाली डेसिमल सिस्टम का स्वतंत्र विकास हुआ, और वो समीकरणों के समूह मतलब सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हल करने में माहिर थे।
अच्छा।
और फिर आता है भारत का सुनहरा दौर।
हाँ, ये हिस्सा तो हमें खास तौर पर ध्यान से सुनना चाहिए। भारत का योगदान
दुनिया के लिए अनमोल रहा है। स्थान मान दशमलव प्रणाली प्लेस वैल्यू डेसिमल सिस्टम, यानी वही तरीका जिससे हम आज संख्याएं लिखते हैं, 1, 10, 100, हर अंक की जगह का महत्व।
और सबसे क्रांतिकारी शून्य, जीरो।
हाँ, सिर्फ एक खाली जगह नहीं बल्कि एक संख्या के रूप में शून्य को स्थापित करना। सोचिए, इसने गणना को कितना आसान बना दिया होगा।
बिल्कुल। साथ ही त्रिकोणमिति की भी नींव।
जी, ट्रिग्नोमेट्री की भी मजबूत नींव भारत में रखी गई, साइन कोसाइन जैसी चीजें।
और इसके बाद?
इसके बाद इस्लामी स्वर्ण युग, लगभग 8वीं से 14वीं सदी। यहाँ के विद्वानों ने न सिर्फ यूनानी और भारतीय ज्ञान को अरबी में अनुवाद करके सहेजा।
हाँ, ये बहुत बड़ा काम था।
बल्कि उसमें बहुत कुछ जोड़ा भी। बीजगणित यानी अलजेब्रा का तो नाम ही अरबी शब्द अल जबर से आया है।
अच्छा, अलख्वारिज्मी के काम से जुड़ा है शायद।
बिल्कुल, अलख्वारिज्मी जैसे गणितज्ञों के काम से उन्होंने त्रिकोणमिति को भी बहुत आगे बढ़ाया। तो देखिए, शुरुआती गणित कितना ग्लोबल और आपस में जुड़ा हुआ था।
ये बात तो साफ हो गई। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, 16वीं और 17वीं सदी, यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति का दौर।
हाँ, यहाँ गणित ने एक नई केंद्रीय भूमिका अपनाई। इटली में कार्डानो जैसे लोगों ने त्रिघात क्यूबिक और चतुर्घात क्वाटिक समीकरण हल करने के तरीके खोजे।
ये बड़ी बात थी उस समय।
बहुत बड़ी। ये सिर्फ गणितीय पहेली नहीं थी, ये एक तरह से आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात थी कि हम प्राचीन यूनानियों से भी आगे जा सकते हैं।
और इसी दौर में गणित की शक्ल भी बदली है ना, प्रतीकों का इस्तेमाल।
हाँ बिल्कुल, पहले बीजगणित को भी लंबे लंबे वाक्यों में लिखा जाता था। सोचिए कितना मुश्किल होता होगा।
धीरे धीरे प्रतीकों सिंबल्स का इस्तेमाल बढ़ा। वियर्ट और खासकर देकार्त ने इसमें बड़ा योगदान दिया। स्टेडल बताती हैं कि ये प्रतीक सिर्फ लिखने का शॉर्टकट नहीं थे।
तो क्या थे?
ये सोचने के औजार बन गए। इनसे गणितीय विचारों को पकड़ना और आगे बढ़ाना आसान हो गया।
देकार्त का एक और बड़ा काम था, एनालिटिक ज्योमेट्री, बीजगणित और ज्यामिति को मिलाना, आका कैलकुलस।
हाँ, न्यूटन और लाइबनिस।
जी, दोनों ने लगभग एक ही समय में इसे स्वतंत्र रूप से विकसित किया। स्टेडल इसे सिर्फ इस लड़ाई की तरह नहीं देखती कि किसने पहले खोजा।
तो कैसे देखते हैं?
वो इसे उस समय की वैज्ञानिक जरूरतों से जोड़ती हैं, जैसे ग्रहों की गति समझना या किसी बदलती हुई चीज की दर निकालना। इन समस्याओं को हल करने के लिए एक नए गणित की जरूरत थी, और कैलकुलस उसी जरूरत से पैदा हुआ।
मतलब जरूरत आविष्कार की जननी है, यहां भी लागू हुआ।
बिल्कुल।
चौथा अध्याय, 18वीं सदी, कैलकुलस का दौर।
हाँ, इस सदी में कैलकुलस का जमकर इस्तेमाल हुआ। यूलर जैसे गणित के महानायक इसी दौर में हुए। उनकी काम करने की क्षमता तो हैरान करने वाली थी।
और गणित अब सिर्फ कुछ लोगों का शौक नहीं रहा, अकादमियां वगैरह बनी।
जी, वैज्ञानिक अकादमियां बनी, पेरिस बर्लिन में पत्रिकाएं छपने लगीं। इससे विचारों का आदान प्रदान तेज हुआ, गणित एक व्यवस्थित विषय बनने लगा।
कैलकुलस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ?
भौतिकी, खगोल विज्ञान, इंजीनियरिंग में खूब हुआ। नए क्षेत्र जैसे वेरिएशनल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन विकसित हुए। लेकिन स्टेडल एक दिलचस्प बात बताती हैं।
क्या?
ये सारा विकास थोड़ी कच्ची नींव पर खड़ा था।
कच्ची नींव मतलब?
मतलब गणितज्ञ इन्फिनिटेसिमल्स यानी बेहद छोटी, लगभग शून्य जैसी राशियों का इस्तेमाल तो कर रहे थे, पर उनकी सटीक परिभाषा क्या है ये साफ नहीं था। लिमिट की पक्की परिभाषा अभी नहीं थी।
अच्छा, तो नींव मजबूत करने का काम कब हुआ?
यहीं से शुरू होती है पांचवें अध्याय की कहानी, 19वीं सदी, जिसे कठोरता का युग या एज ऑफ रिगर कहा जाता है।
कठोरता मतलब?
नियमों को पक्का करना। हाँ, अब गणितज्ञों का ध्यान गया कि चलो भाई, ये जो कैलकुलस का शानदार महल हमने बनाया है, इसकी नींव को मजबूत करें। कॉची और वियरस्ट्रास जैसे लोगों ने लिमिट, निरंतरता, कंटिन्यूटी, इनकी वो पक्की परिभाषाएं दी, एप्सिलॉन डेल्टा वाली।
हाँ, वो तो कॉलेज में पढ़ी थी, बहुत मुश्किल लगती थी।
हाँ, पर वो गणित को एक ठोस आधार देने के लिए जरूरी थी। लेकिन 19वीं सदी सिर्फ नींव मजबूत करने तक सीमित नहीं थी।
और क्या हुआ?
ये गणित में जबरदस्त फैलाव और अमूर्तता, मतलब एब्स्ट्रैक्शन का भी दौर था। गॉस जैसे गणितज्ञों ने तो हर क्षेत्र में कमाल किया। और फिर आई एक वैचारिक क्रांति, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री।
नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिड वाली नहीं?
हाँ, हजारों साल से यूक्लिड की ज्यामिति को ही एकमात्र सत्य माना जाता था। लेकिन बोलियाई, लुबाचेव्स्की और रिमान ने दिखाया कि और तरह की ज्यामिति भी संभव है।
ये तो बहुत बड़ी बात होगी उस समय।
इसने गणित की दुनिया को हिला दिया। सोचिए, ये कहना कि सीधी रेखाओं के नियम भी बदल सकते हैं। इसने गणित को सिर्फ संख्याओं और आकृतियों के अध्ययन से कहीं आगे अमूर्त संरचनाओं के अध्ययन की ओर मोड़ दिया।
और क्या आया इस दौर में? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी।
जी हाँ, अमूर्त बीजगणित, खासकर ग्रुप थ्योरी। और जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी और अनंत इन्फिनिटी की अलग अलग साइज की बात करके सबके होश उड़ा दिए।
अनंत की भी अलग अलग साइज, वाह।
छठा अध्याय हमें 20वीं सदी और उसके आगे ले जाता है। यहाँ क्या थीम है?
यहाँ थीम है और ज्यादा अमूर्तता, औपचारिकता यानी नियमों पर जोर, और संगणना यानी कंप्यूटर का युग।
हाँ, सदी की शुरुआत हिल्बर्ट के 30 मशहूर समस्याओं से हुई जिन्होंने गणित के लिए एजेंडा सेट किया।
लेकिन गणित को पूरी तरह से तर्क की ठोस जमीन पर खड़ा करने का सपना, वो टूट गया गोडेल के कारण।
हाँ, कर्ट गोडेल के अपूर्णता प्रमेयों से उन्होंने जो दिखाया वो चौंकाने वाला था।
क्या दिखाया उन्होंने?
उन्होंने साबित किया कि किसी भी गणितीय सिस्टम में, अगर वो थोड़ा भी जटिल है, तो हमेशा कुछ ऐसे सच होंगे जिन्हें उसी सिस्टम के नियमों से साबित नहीं किया जा सकता।
मतलब गणित की अपनी सीमाएं हैं?
बिल्कुल, ये गणित की प्रकृति के बारे में एक बहुत गहरी खोज थी। इसी दौर में टोपोलॉजी जैसे और अमूर्त क्षेत्र उभरे।
और दूसरी तरफ कंप्यूटर की शुरुआत, एलन ट्यूरिंग।
जी, एलन ट्यूरिंग के काम ने कंप्यूटर की सैद्धांतिक नींव रखी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध ने कोड तोड़ने, क्रिप्टोग्राफी जैसे व्यावहारिक गणित को बहुत बढ़ावा दिया।
और फिर कंप्यूटर के आने से तो बहुत कुछ बदला होगा।
हाँ, न सिर्फ गणनाएं तेज हुई, बल्कि गणित करने के नए तरीके भी सामने आए, जैसे कंप्यूटर की मदद से प्रयोग करना, जिसे एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिक्स कहते हैं।
और सातवां, आखिरी अध्याय, वो फिर से इतिहास लिखने के तरीके पर लौटता है।
जी, स्टीडल फिर जोर देती हैं कि हमें सिर्फ महान गणितज्ञों की जीवनियां पढ़ने से आगे जाना होगा, हमें गणित के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझना होगा।
मतलब गणित कैसे पढ़ाया जाता था, कौन लोग गणित करते थे, किन संस्थानों ने इसे बढ़ावा दिया,
ये सब।
बिल्कुल, वो डिजिटल आर्काइव्स जैसी नई तकनीकों की बात करती हैं, जिनसे पुराने दस्तावेजों तक पहुंचना आसान हो गया है। वो हमें गणित के इतिहास को एक खत्म हो चुकी कहानी की तरह नहीं,
बल्कि एक जारी खोज की तरह देखने को कहती हैं।
सही।
वाह, क्या जबरदस्त यात्रा रही है ये गणित के इतिहास की। अगर हम स्टेडल की बातों का सार निकालें तो कुछ मुख्य संदेश क्या होंगे?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और जरूरी बात, गणित एक इंसानी और सामाजिक गतिविधि है। ये कोई आसमान से टपका ज्ञान नहीं।
हाँ,
बल्कि हम इंसानों ने अपनी जरूरतें पूरी करने, जिज्ञासा शांत करने और दुनिया को समझने के लिए इसे बनाया है। इसमें आपसे बातचीत, संस्थाओं, समाज का बड़ा हाथ रहा है।
जैसे आज भी बड़े वैज्ञानिक प्रोजेक्ट टीमों में होते हैं, अकेले नहीं।
बिल्कुल। दूसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, हमें इतिहास को सीधी रेखा में बढ़ती हुई तरक्की की कहानी की तरह नहीं देखना चाहिए, वो विग हिस्ट्री वाली बात।
हाँ, कि सब कुछ बस बेहतर ही होता गया।
गणित में भी भटकाव हुए, कुछ रास्ते छोड़े गए, अलग अलग समय पर लोगों की समझ अलग थी। हमें अतीत को उसी के चश्मे से देखना चाहिए, न कि आज के पैमाने से आंकना चाहिए।
ये बात जीवन में भी लागू होती है ना? अपने या दूसरों के पिछले फैसलों को उस समय के हालात में समझना जरूरी है।
बिल्कुल। तीसरा अहम संदेश, गणित एक ग्लोबल धरोहर है, इसे सिर्फ यूरोप की कहानी समझना अधूरा है।
बेबीलोन, मिस्र, चीन, खासकर भारत और इस्लामी दुनिया, इनका योगदान बुनियादी है।
जी, हमारी गिनती, शून्य, बीज गणित की शुरुआत, ये सब बाहर से आए हैं।
एक भारतीय होने के नाते ये जानना गर्व की बात है कि दशमलव प्रणाली और शून्य जैसी खोजों ने दुनिया भर में गणित का चेहरा बदल दिया। ये दिखाता है कि ज्ञान कैसे सीमाओं के पार फैलता है।
सही कहा। चौथा, संदर्भ का महत्व। कोई गणितीय खोज क्यों हुई, ये समझने के लिए उसके समय का माहौल समझना जरूरी है।
यूनानी गणित का दर्शन से रिश्ता, कैलकुलस का भौतिकी की समस्याओं से जुड़ाव,
19वीं सदी में सटीकता पर जोर, ये सब दिखाते हैं कि गणित हवा में नहीं बनता, वो अपने समय की जरूरतों और विचारों से जुड़ा होता है।
और पांचवा, गणित करने का तरीका भी बदलता रहा है। शब्दों में लिखने से लेकर प्रतीकों तक का सफर, सबूत देने के बदलते पैमाने।
हाँ, ये दिखाता है कि जिसे हम गणित कहते हैं वो भी स्थिर नहीं है, वो भी विकसित हुआ है।
स्टेडल की किताब ऐसे विचारों से भरी है जो सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर उनके कुछ मुख्य तर्कों को हम अपनी भाषा में कहें तो,
हाँ, जैसे पहला ये कि गणित का इतिहास सिर्फ आज की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि अतीत में गणितीय सोच के अलग अलग तरीकों को समझने की कोशिश है।
मतलब बेबीलोन के गणित को कमतर ना समझें,
बल्कि ये देखें कि वो उनके लिए कैसे काम करता था। सही। दूसरा ये कि गणित सिर्फ अकेले जीनियस लोगों का काम नहीं जो कहीं से दिव्य ज्ञान ले आते हैं, ये एक मिलजुल कर किया जाने वाला अक्सर जटिल इंसानी प्रयास है।
न्यूटन और लाइबनिस का एक साथ कैलकुलस तक पहुंचना शायद इसी का उदाहरण है कि माहौल तैयार था।
बिल्कुल। तीसरा जो बार बार आता है, गणित की कहानी पूरी दुनिया की कहानी है, सिर्फ यूनान से यूरोप तक की कहानी अधूरी और भ्रामक है।
ये भारत, चीन और इस्लामी दुनिया के बुनियादी योगदान को नज़रअंदाज करती है। ये ज्यादा सच्चा और समावेशी इतिहास लिखने की अपील है।
जी। और चौथा, गणितीय चिन्ह सिर्फ लिखने की सुविधा नहीं है, वे खुद सोचने के औजार हैं।
हाँ, बेहतर प्रतीकों ने विचारों को साफ किया और आगे बढ़ाया, जैसे शून्य ने संख्याओं को लिखने और समझने का तरीका ही बदल दिया।
इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कुछ लेना देना है ना?
बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें किसी भी कहानी को आंख बंद करके नहीं मान लेना चाहिए,
चाहे मीडिया में हो, विज्ञापनों में या ऑफिस की गपशप में।
हाँ, हमेशा सोचना चाहिए ये किसकी कहानी है, क्या छुपाया जा रहा है, क्या सफलता की कहानी में मुश्किलों और सहयोग को अनदेखा किया जा रहा है।
दूसरा, ये नए विचारों और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। इतिहास दिखाता है कि कैसे अलग अलग चीजों को जोड़ने,
जैसे बीजगणित और ज्यामिति,
या पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने,
कैसे यूक्लिड की ज्यामिति,
से बड़ी खोजें हुई। ये किसी भी काम में नयापन लाने के लिए जरूरी है लीक से हटकर सोचना।
तीसरा, ये हमें विविधता की कद्र करना सिखाता है। गणित का इतिहास बताता है कि ज्ञान किसी एक जगह या एक तरह के लोगों की पपौती नहीं,
अलग अलग नजरियों से ही मुश्किल समस्याओं के हल निकलते हैं। टीम वर्क में अलग अलग सोच वाले लोगों का होना फायदेमंद होता है।
और चौथा, ये मुश्किल चीजों को सीखने में मदद कर सकता है।
जैसे बहुत से लोग गणित से डरते हैं।
हाँ, ये तो है, लेकिन जब हम उसके पीछे की इंसानी कहानी, उनके संघर्ष, उनकी जिज्ञासा को जानते हैं तो वो कम डरावना और ज्यादा दिलचस्प लगने लगता है। किसी भी विषय को उसके इतिहास और संदर्भ से जोड़कर सीखना ज्यादा आसान हो सकता है।
और हाँ, कम्युनिकेशन, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का महत्व। गणित में तरक्की तेज हुई जो विचार आसानी से साझा होने लगे, छपाई, पत्रिकाओं, अकादमियों के जरिए।
यह हर क्षेत्र में लागू होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
मेरे लिए इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ा सबक यह है कि अतीत की कहानी हम कैसे कहते हैं, ये हमारी आज की समझ को बहुत गहरे तक प्रभावित करता है।
हाँ।
गणित सिर्फ नियमों का सेट नहीं, बल्कि खोज और जिज्ञासा की एक जिंदा ग्लोबल कहानी है। ये जानना हैरान करता है कि जिसे हम आज गणित कहते हैं उसके कितने अलग अलग मतलब और मकसद रहे हैं अलग अलग समय और जगहों पर।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि गणितीय प्रगति कभी आसान नहीं रही। इसमें वैचारिक दीवारों को तोड़ना पड़ा, पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने का साहस चाहिए था, और शून्य या अनंत जैसी अवधारणाओं को अपनाना पड़ा जो शुरू में शायद अजीब लगती थीं। ये दिखाता है कि कुछ नया सीखने या बनाने के लिए हिम्मत और खुली दिमाग की जरूरत होती है,
और ये भी कि दिमागी कसरत और दुनिया की जरूरतें दोनों मिलकर ही ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।